और जब अल्लाह की कदर होगी ना, तो फिर उससे अगली चीज़ जो है वो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मार्फत से महरूमी। देखिए ये लफ्ज़ सही को नोट कर लीजिए, ये अल्लाह के नाम के साथ नहीं आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत तो हमें होती है, एक रसूल होने के नाते, नबी होने के नाते, राहबर होने के नाते, मुर्शद होने के नाते। लेकिन जो उनकी सही मार्फत थी, जो उनकी सही पहचान थी ना, वो नहीं होती। कैसे, आइए जरा इसको पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मार्फत का ना होना भी नवाकिज़े ईमान में है। यानी जब अल्लाह के रसूल का सही मुकाम हमें नहीं पहचाना जाता तो भी हमारा ईमान टूट जाता है। बल्कि इंसान इस वक्त तक दायरा ईमान में दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नसीब ना हो। इसको हाईलाइट करें। मुझे इस जुमले को पढ़ते हुए सूरत बकरा के बिल्कुल दूसरे रकू की पहली आयत याद आ रही है, वमिनन नासि मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। याद होगी आपको भी, मुनाफिकों का तस्करा इस आयत से है कुरान में, कि लोगों में से बाज ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए और रोज़े आखरत पर भी लाए, हालांकि अल्लाह ताला उनके दिल का पोल खोलते हुए कह रहे हैं कि वो ईमान वाले कोई नहीं। तो वहाँ क्या चीज़ नहीं थी, पीछे भी आपको मैंने तफसीर में कई बार ये जुमला बोला है, मुनाफ़क़त रसूल पर ईमान ना लाने का नाम है। जो महजूफ है, हजफ थी थिंग है, हजफ शुदा चीज़ या एलिमिनेटेड या वो चीज़ जो नहीं है उस जुमले में, वो क्या है कि आमन्ना बिल्लाही व बिर रसूली व बिल यौमिल आखिर। मक्की दौर के तीन पिलर्स जो थे उसमें से एक पूरे पिलर का जिक्र ही नहीं है वहाँ। तो रसूल पर ईमान लाकर रसूल की कदर होगी तो सच्चा ईमान मिलेगा। लोगों में बाज ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज ऐसी सिफतें जो कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, वो इन सब से सल्ब कर लेते हैं, सल्ब मीन छीन लेते हैं, और अपने ख्याल में इन सिफात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नामुनासिब ख्याल करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, और कुछ लोग आपको बशर करार देना इनकी शान में गुस्ताखी करार देते हैं, है ना ये बात। इसी तरह से कुछ लोग ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अलावा किसी और की तालीम, अफकार व नज़रियात दौर हाज़र में ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा कामिल हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो तागूत के हुक्म को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तरजीह देते हैं, या यूं कहते हैं कि वो सिर्फ अरबों के लिए या उस दौर के लिए नबी थे। कुछ लोग दूसरी तरफ यूं इंतहा में गुम हो जाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलूहियत के करीब कर देते हैं। अलूहियत क्या हुआ, अल्लाह के ही सिफात, यानी इलाह के दर्जे पे ले आते हैं, एग्जेजुरेशन करते हैं, गलूब करते हैं, और आपकी बशरियत और अबदियत से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। ये सब की सब सरीह कुफर की बातें, सरीह मीन मुकम्मल। जिन लोगों में ये बातें पाई जाती हैं वो दायरा ईमान से खारिज हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत अल-अहज़ाब आयत 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी में बेहतरीन नमूना अमल है। सूरत अल-अंबिया 107 में आता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर जहानों के लिए रहमत बनाकर। सूरत सबा 28, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको तमाम के तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना के भेजा है। इसी तरह से जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के अलावा किसी दूसरे की दावा करदा नबूवत की पैरवी शुरू कर दे, वो भी दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खारिज हो जाता है। आज ऐसे कुछ लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर किसी के नबी होने को मानते हैं, इसलिए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स नबी नहीं हो सकता। सूरत अल-अहज़ाब आयत 40, वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीयीन, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमन नबीयीन है। सारी बात आपने पढ़ ली, खुलासा क्या निकला कि जिस तरह अल्लाह की कदर करना लाजमी है ना, اس طرح نفس سلم کی قدر بھی لازمی ہے. میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی ایسی سسٹر ہوں گی کہ جنہوں نے ابھی تک کبھی سیرت نہیں پڑھی. ہے کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے جنہوں نے اے ٹو زی سیرت نہیں پڑھی آج تک کبھی بھی. کہ اگر میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں کہ چلیے ذرا اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات بالترتیب بیان کیجئے, کون کر سکتا ہے آپ میں سے؟ موٹے موٹے واقعات مکی دور کے, مدنی دور کے, کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے محبت لفظوں سے نہیں آتی. میں آپ سے کہوں, آپ ذرا اپنے 10 سالہ بچے کی زندگی کے واقعات تو بتائیے, آپ فوراً اس کی بک نکال لیں گے جو آپ نے اس کی پیدائش پہ بنائی تھی. یہاں پیدا ہوا, یہ اس کی پہلی برتھ ڈے ہے, یہ اس کا پہلا دن ہے اسکول میں, پھر یہ پہلی دفعہ بولا تھا, یہ پہلا لفظ ہے جو بولا تھا. آج ہم نے اپنے آپ کو پوجا, اور اب رواج کیا ہو گیا کہ شادی کے موقع پہ وہ تصویریں دکھا کے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو آج شادی تک یہ کن مرحلوں سے گزرا. لیکن محبت ہے نا, ہمیں اپنے ماں باپ کی, ہمیں رشتہ داروں کی, اپنے آپ کی, سب کی باتیں زبانی یاد ہوتی ہیں. آپ کی شادی کب ہوئی, کہاں ہوئی, کیا ہوا, اس کو دہراتے رہتے ہیں. کہاں اللہ کے نبی کی معرفت ہے. اور میں تو ہمیشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے نا, یقین کریں یہ میری کمزوری کہہ لیں, مجھے اللہ کے نبی کا مشن یاد آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں آج کے دور میں اگر لوگوں کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا دیں. میں نے پچھلے دنوں پاکستان کے درس میں اس پہ بہت دفعہ بات کی ہے کہ آج آپ کچھ نہ کریں, اور چلے مت قرآن پڑھیں, آپ کو ٹو مچ لگتا ہے, اور یہ علماء کا کام ہے, اور یہ عام عورتوں کے بس کی بات نہیں. مان لیتے ہیں چند لمحوں کے لیے, نہیں کرتے ہم, چھوڑ دیں. آپ ایک دفعہ سیرت شروع سے پڑھیں, کسی کی بھی لکھی بھی پڑھ لیں. میں نے الحمدللہ شاید پڑھی ہی اچھی بکس ہیں. مجھے تو اللہ کے نبی کا جو نقشہ نظر آیا نا, وہ حرکت والا ہے. مشن, مقصد, زندگی. بچی مر رہی ہے, مقصد. بیٹی بیمار ہے, مقصد. بیٹی کا بچہ دنیا سے جانے والا ہے, آپ اپنے کام پہ لگے ہیں. ادھر خوشی, ادھر غم. ابھی ایک کام پورا ہوتا ہے تو دوسرے پہ تیار ہیں. ادھر جنگ نہ ہونے کا معاہدہ ہوا ہے تو ادھر دعوت کا میدان کھل گیا. ادھر دعوت دینے گئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں کچھ لوگوں نے کچھ اور معاملے کر دی. یعنی آپ کاموں میں سے کام نکالتے تھے, ایک پروجیکٹ ختم, دوسرا, تیسرا. آپ 23 سال انگلیوں پہ گن کے دیکھیں, اور صرف اس میں 10 سال مکہ کے, 82 کے قریب تو صرف جنگیں اور مارکے ہیں. اور آپ صرف جنگیں اور مارکوں میں نہیں رہتے تھے, آپ نے کس طرح سے مدینہ کو آرگنائز کیا تھا. انسان ہونے کے ناطے آپ کی مردوں والی ذمہ داریاں تو ملتی ہیں. اور جس مرد کا بھی ہم سوچیں گے, چاہے وہ ہمارے باپ ہوں, چاہے بھائی ہوں, بے شوہر ہوں, بیٹے ہوں, اس کی تو ایک ہی بیوی ہوگی نا زیادہ زیادہ, یا 2-4 بچے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 9 گھر تھے ایک وقت میں. آپ ذرا نوٹ کر کے دیکھیں کہ آج ہم اپنی ذاتی زندگی میں کتنے خود غرض ہو گئے ہیں. مجھے تو یہ اس سے خلقہ کو لفظ ملا نہیں, سیلفش زندگی. جو یہ سوچتا ہے نا مرد کہ میری زندگی کا مقصد کمانا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے, اینڈ لیس ورک, تو اللہ کے نبی کی معرفت نہیں رکھتا. سوری ٹو سے دیٹ. جس مرد کے پاس اپنی اصلاح کے لیے پڑھنے لکھنے کا, تربیت کا ٹائم نہیں ہے, 24 گھنٹے میں 24 منٹ بھی نہیں ہے, مان لیجئے کہ اس کو رسول اللہ کی معرفت نہیں ہے. جس مرد کی زندگی میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے 24 گھنٹے میں, مان لیجئے کہ اس کو اللہ کے نبی کی معرفت نہیں ہے. جس کی زندگی میں دوسروں کو دعوت دینے کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ایک دن میں, مان لیجئے کہ پھر وہ ایک الگ لائف سٹائل ہے. اور جس کی راتوں میں کوئی ایک نفل بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سینے سے ہنڈیا کے کھولنے کی طرح کی آوازیں لائے, پھر نبی کی معرفت کوئی نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایک ایک لفظ کو دل پر لے کر سوچیں. آج امت مسلمہ کے مرد کہاں رسول اللہ کی معرفت رکھتے ہیں؟ بہت بھی جو نیک لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو اور نیک کرے, تو وہ فرائض کی حد تک بہت اچھے, عبادات کی حد تک بہت اچھے. یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل نہیں ہے, لیکن اوور آل 100 لوگوں کو ملیے, ان میں سے آپ کو شاید, چلے میں بہت خوش گمانی کے ساتھ کہتی ہوں, 10 لوگ آپ کو ملیں گے اللہ کے نبی کی طرح تڑپنے والے, مچلنے والے, گھر والوں کی فکر, اصلاح کی فکر, بیویوں کی فکر, ان کے کاموں میں فکر مند ہیں, ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, بچوں کی تربیت کی فکر ہے, रिश्तेदारों की फिक्र है, हमसायों को दीन पे लेके जा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, कहीं इस्लाम को गालिब कर रहे हैं, कहीं वो मस्जिदों को हेल्प कर रहे हैं। यानी ये 100 में से 10 होंगे ज्यादा से ज्यादा। ये भी मैंने बहुत ही बात कर दी बड़ी, 90 लोग 100 में से आपको जाती गम, जाती खुशियां कमाना। उसमें भी अगर वो 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ लें, वक्त पे, तो मैं कहती हूं कि ये भी अल्लाह ताला की रहमत है उनके ऊपर, और आप मैं हम अपने ऊपर ले लें। देखिए जैसे नबी सल्लम मर्दों के लिए रोल मॉडल है ना, तो नबी सल्लम की बीवियां हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें थी, फर्स्ट लेडीज थी। आज के दौर में आप कह लीजिए क्वींस, मिस्ट्रेसेस, वजीरे आजम की बेगम, सदरे पाकिस्तान की बेगम, यानी उनका मुकाम कोई छोटा थोड़ी था। वो कोई मुफलिस और कलाश मर्द की बीवियां तो नहीं थी, अपने वक्त के हाकिम की बीवियां थी। लेकिन उन्होंने एक हल्का सा मुतालबा कर दिया था तो अल्लाह के नबी ने इख्तियार दे दिया था कि फिर आपकी मर्जी। कितनी साबिरात थी, कितनी शाकिरात थी। हमारे पास दुनिया इतनी बढ़ती है, उसको संभालने के लिए फिर ना शुक्रिया, हम कहते जगह ही कोई नहीं, चीजें रखे किधर, खाना इतना है कि हमारे पास खाने का वक्त नहीं है, फिर भी अंदर कहते हैं और चाहिए। देखिए ये बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। कल परसों से एक चीज कई दफा जहन में आ रही है, जो मैंने एक दो जगह शेयर भी की, कि इस दुनिया को यूज करें, ओन ना करें, आप खुश रहेंगे। ओन करने में ही तो सारे मसले। आप कहते मैं मालिक बनना चाहती हूँ उस घर की, पिस जाएंगे आपकी हड्डियां, घिस जाएंगी जॉबें कर करके, किस्तें दे दे के, आप कब्र में चले जाएंगे, वो घर आपका नहीं होगा। आप उतने पैसे लगाकर किराए पे ले लें, ओन नहीं करें, आप यूज कीजिए। आप रहना तो घर में आपने है ना, अपने में रहें या किसी के दरो दीवार तो नहीं बोलते। आप यूज करें, आप नेमतों को इस्तेमाल करें। जब हम हराम हलाल का फर्क किए बगैर ओन करने के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो मान लीजिए कि रसूल के उसवे से तुम हट गए, तो जिंदगी में थोड़ा सा हमें वक्त निकालना है। आप अपने लिए एक छोटी सी एक एक्टिविटी लिख लें, जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आए कि जिसको आपने चूज करना है या रिजेक्ट करना है, तो आप उस लम्हे सोचें, अगर मेरी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी अजवाज होती, वो इसमें से किस अमल को चूज करती? आप देखेंगे पहनने ओढ़ने से लेकर, खाने पीने से लेकर, रिश्ते नाते करने से लेकर, दावते लोगों की न्याजमंदियां करने तक, आपको एक क्राइटेरियन मिल जाएगा। आज के दौर में जरा इमेजिन तो कीजिए कि नबी सल्लम और आपकी अजवाज होती, इमेजिन करें जरा, जहन को हरकत दें। ऐसे ही नाम ले लेती हूं बगैर सोचे समझे, फ्रांस में रहते हैं। अब किसी भी मुल्क में ले सकती हूं, लेकिन हम कोई भी ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए अल्लाह के नबी सल्लम फ्रांस, जर्मनी, यूएई, यूके, कहीं दुनिया के किसी मुल्क में रहते, चले यूरोप में रहते, अमेरिका में रहते, कनाडा में रहते, जापान में रहते, ऑस्ट्रेलिया में रहते, कैसे होते? क्या वो ये सारी चीजें कबूल कर लेते सिस्टम के नाम पे जो आज मुसलमानों ने कर ली? मैं कहती हूं अल्लाह करे वो होते, तो आज इन मुल्कों का भी नसीब बदल चुका होता। ये हम जैसे लोगों ने इन गरीबों को भी कुफर पे मार दिया, हमने इनको भी सूद की दलदलों से निकलने ही नहीं दिया, क्योंकि एक्सेप्ट इट, इफ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम। ये हम मुजरिम है, ये तो क्यामत के दिन पता लगेगा। और ये दुनिया में आज मुसलमानों को लग रहा, पता समझ नहीं आती हमें, हमने इनको कुफर पे रखा हुआ है, माने ना माने, हमने इनको बेदीनी में जीने पे मजबूर किया है, क्योंकि हमारे पास था एक नुस्खा कीमिया, लेकिन हमने लोगों को नहीं दिया, अपना भी छुपा के रख दिया कि नहीं अभी इनके तौर तरीकों पे चलो। चीखें निकल आती हैं हलक में फंसे हुए, हम छोटा सा रिस्क नहीं लेते। मैं अक्सर सोचती हूं अल्लाह हम करोड़पति लोग हैं, हम चंद 100 का रिस्क नहीं लेते और हराम चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम अपने नुकसान खुद नहीं भुगतना पसंद करते, ये ईमान है, ये मुर्दा ईमान है, ये बीमार ईमान है, ये जख्मी ईमान है, ये जिंदा ईमान नहीं है। जिंदा ईमान तो हर वक्त अंदर से आपको ताने देता है, वल्लाही मुक्के मारता है अंदर से, शर्म करो। अकल करो, होश के ना हुन लो। वो जैसे एनेमिक होता है ना बंदा, समझते हैं एनेमिक, खून की कमी होती है ना, तो आप देखते हैं जिसमें ब्लड की कमी होगी ना, ब्लड डेफिशिएंसी होगी, खून की कमी होगी, तो वो बंदा ज्यादा चल नहीं सकता, थक जाता है, उसके हाथ पांव सुन्न होते हैं, कोई चीज उठाए तो गिर जाती है, चार कदम चले तो सांस फूलता है, फिर कहते हैं कोई मसला है डॉक्टर को दिखाओ, फिर डॉक्टर कहते हैं जी इसमें खून की कमी है, इसको फौरन सही करें, या विटामिन डी की कमी है, ये कर दे वो कर दे, बस इसी को ले लीजिए। जब अंदर ईमान की कमी आती है ना, तो नेकियां मुश्किल और गुना आसान लगते हैं। और ये हम मुसलमान हैं, बाकियों को तो छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे हैं। हम मुसलमान अगर अल्लाह के नबी के तर्ज जिंदगी पे जीते तो आज हम खुशहाल और खुशहरम होते। पूरे मदीना की गलियों को तसव्वुर की आंख से देखिए जो अल्लाह के नबी के दौर में थे, आपको बेचारे नहीं दिखेंगे वहां, बीमार नहीं, परेशान नहीं, दुखी नहीं, पैसा नहीं होता था लेकिन खुश होते थे, गुर्बत में भी खुश थे, कोई लग्जरियस घर नहीं थे उनके, कभी आप उनके आपस के लाड चाव तो देखिए, क्या मोहब्बत भरे घर थे उनके। और आप देखिए ये कड़वी बातें जो है ना, ये आज अगर हम दिल पे ले लें तो शायद हम में से किसी एक की अगली जिंदगी खुशियों वाली बन जाए। आज नकली खुशियों की तलाश में इंसानियत भाग रही है। मैंने अक्सर लोगों को खुशी के मौके से वापस आकर बात करते देखा है कि ये होना नहीं चाहिए था जो हुआ, ये हमने जो किया ना, ये हमें करना नहीं चाहिए था। इसी के साथ अगली चीज लें, बिल्कुल एक ही मौजू है, ग्यारहवीं चीज जिससे ईमान टूट जाएगा, और वो क्या है कि दीन का अमलन तर्क कर देना। लफ्ज अमलन को हाईलाइट कर लें, बाकी दो लफ्ज आसान है। लफ्जों में दीन होता है, दामों में दीन होता है, इरादों में भी दीन होता है, अमल में नहीं रहता। जब मुसलमान किरदार के गाजी ना बने, गुफ्तार के गाजी बन जाएं, तो ईमान चला जाता है, ईमान फौत हो जाता है। और पता नहीं, देखिए शहर में एक फौतीदगी होती है, सबको पता लग जाता है, एक मौत होगी, करीबी लोगों को फौरन पता चल जाएगा खानदान में फला मर गया। पता नहीं रोज कितनों के ईमान मरते हैं, खबर ही नहीं होती, ना हम उसके जनाजे में जाते, ना हम उनके कफन दफन में जाते। कितनों के ईमान दिन में कई बार बिक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। वो शख्स जो अल्लाह के दीन से अमलन मुंह मोड़ लेता है, ना दीन का इल्म हासिल करता है, ना इस पे अमल करता है, और ना इसकी जरूरत महसूस करता है। ये तीसरे जुमले को हाईलाइट करें, जरूरत ही नहीं जब महसूस होगी तो लेगा कौन, अमल करना तो दूर की बात है। और अपने मुस्तकबल में दीन सीखने, सिखाने या इस पर अमल करने का कोई प्रोग्राम नहीं रखता। अगला जुमला आप सब पढ़े, मैं नहीं पढ़ती, सब मिलके पढ़े। कितने लोग हैं जो इसको मानते हैं, फिल वाक्य लफ समझ गया ना, यानी किताबों में वो मुसलमान है, नाम भी उसका इस्लाम वाला है, पर वाकयतन वो मुसलमान नहीं है। यानी लफ्ज मुस्लिम एक आइडेंटिटी है भाई। आप इस जुमले को थोड़ा सा बदल के मेरे से सुनिएगा, जो शख्स प्रैक्टिस ना करे, जो मरीजों को ना देखे, जो हॉस्पिटल में ना जाए, जो अपना प्राइवेट क्लिनिक ना बनाए, जो किसी बीमार को देखने की जरूरत महसूस ना करे, वो फिल वाके डॉक्टर नहीं है। बात समझ आई है? डॉक्टर कौन है जो सब कामों से उलट करे? इस्लाम या मुस्लिम होना भी एक डिग्री का नाम है। अल्लाह ताला के इरशादे ग्रामी है सूरत सजदा आयत 22, और हर रात ही पढ़ते होंगे आप लोग इसके अंदर ये जुमला, वमन असलम मिम्मन जुक्किर बिआयाति रब्बिहि थुम्मा आरद अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा? मतलब क्या है कि ये सबसे बड़ा जालिम है। और ये कौन कह रहा है? अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं, जिसके सामने इसके परवरदिगार की आयात का जिक्र किया जाए और वो इससे मुंह मोड़ ले, बेशक हम लोग مجرم لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں. ان من المجرمین منتقمون. دیکھیے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جائے اور منہ پھیر لے, کیا مطلب ہے؟ علم کی دعوت دی جائے اور وہ کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, طلب ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کیا بدلہ لیتا ہے ایسے لوگوں سے؟ ان کے دل سے خواہش اور طلب ہی نکال دیتا ہے, گلٹ ہی نہیں رہتا. واللہ ہی لوگوں کو آپ کبھی کلاس کا ذکر کریں کہیں نئی جگہ بیٹھ کے, میری تو اب زبان ہی نہیں کھلتی کہ کسی سے کہوں کلاس ہو رہی ہے, کورس ہو رہا ہے. لوگ ایسے سنتے ہیں جیسے اجنبیت. اچھا ہوگا, وہ تو آپ کے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا, ہمارے لیے تھوڑی ہے. میں نے اتنی بے حسی دیکھی ہے علم کے نام پر, دین کے نام پہ. آپ دیکھیں یہ جو بک ہم پڑھ رہے ہیں, کیا یہ لائف چینجنگ بک نہیں ہے؟ آپ کے شہر میں کتنوں تک یہ میسج گیا, کتنوں کو اس کی طلب محسوس ہوئی, اور کتنوں نے اس دعوت کو لبیک کہا؟ آپ کہیں گے بہت نے کہا, لیکن بہت نے نہیں کہا. اور کتنوں کو ریگریٹ ہے آج بھی جو نہیں آ رہے اس کو سیکھنے کے لیے. مجھے دکھ ہے ان کا, میں کہتی ہوں ان کا ایمان نہ مردہ ہی رہے گا ابھی تک. اللہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کے دل کی سوکھی مٹی ہری ہو, ابھی ان کے سوکھے پودے ہرے ہوں, ابھی اور تڑپنا ہے مجھے, ابھی ان کا دل نہیں بدلا. اور میں نے کل رات نیت کی ہے اس کے بعد ایک اور بک پڑھانی ہے انشاءاللہ, وہ بھی پاکستان آرڈر کر رہے ہیں. مردہ ایمان کے ساتھ کوئی دین کے سودے ہوتے ہیں؟ اور ایسے دین کے سودے گاروں کو اللہ نے دینا کیا ہے اور ان کے لیے دنیا میں رکھا کیا ہے؟ آج تو خوشبو ہی نہیں آتی ایمان کی, واللہ ہی اللہ کے گھروں میں جا کے پلٹ آتے ہیں, آپ کو ایمان کی خوشبو کوئی نہیں آتی. سورت فرقان آئے 30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ میرے پروردگار, یہ ہیں میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑا ہوا آج لوگوں نے, اس پہ لیکچر بھی ہے, قرآن کو پکڑ کر چھوڑنا. آج واللہ ہی چھٹا ہوا ہے, خوشیوں میں چھٹ جاتا ہے, غموں میں چھٹ جاتا ہے. من مانے طریقے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں, من مانے طریقے سے ہم دین پہ عمل کرتے ہیں. جو آپ کو دل چاہے نا وہ کریں, بس یہ ہے ہمارا آج دل. میں تو سوچتی ہوں کہ سنتیں کہاں گئیں, بدعتیں اتنی عام ہو گئیں. اور نسائی کی روایت کتاب الصلات میں 8 نمبر کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, فمن ترکہا فقد کفرا, جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. ایک نماز جان کر چھوڑنا بندے کو کافر بنا دیتا ہے. آج کتنی جان کے چھٹتی ہیں. نہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جان کے نہیں چھٹتی, وہ تھکن کی وجہ سے چھٹ جاتی ہے, وہ سمے جاب کی وجہ سے چھٹ جاتی ہے, وہ بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کی وجہ سے چھٹ جاتی ہے, اور وہ بچوں کے کھانے پکانے میں چھٹ جاتی ہے. اسی قسم کی وعید زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے لیے ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. بالکل اسی طرح کی وعید حج اور جہاد چھوڑنے والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ مسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, آپ کو پتا ہے کہ جس میں روزے کا ذکر آتا ہے, کہ جس نے روزہ نہ رکھا یا روزے کے بارے میں سوچا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, لازم نہیں ہے, تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. یعنی مسلم حکومت اس شخص کو قتل کر سکتی ہے کیونکہ اس نے اسلام کے ایک ریچول کا انکار کیا. آج روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں, اور کتنے وہ روزے رکھتے ہیں جس کو آپ روزہ کہتے ہیں, جس کے بعد لعلکم تتقون کی کیفیت ہے. اب آپ دیکھیے اس 4-6 جملوں کے ٹاپک کو ذرا ذہن میں رکھ کر آج کی سوسائٹی پہ نظر ڈالیں تو کتنے لوگ آپ کو عملاً ایمان والے دکھ رہے ہیں. نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, روزے رکھ نہیں سکتے, سگریٹ چھوٹتا نہیں ہے, حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے, اور جہاد تو بالکل آج کے دور میں ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر آپ جانوروں کی زندگی کیا بسر کر رہے ہیں, کھا لیا پی لیا اور اگلے کھانے کا انتظار کر لیا. اکثریت کی زندگی آج کہاں گزر رہی ہے؟ گھنٹوں کے اعتبار سے میں نے دیکھا ہے لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بڑی بڑی اسکرینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, کلنگ دیئر ٹائم, وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ان کو اتنا احساس نہیں کہ یہ دولت چلی گئی پھر واپس نہیں آئے گی. ہم روز گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو قبرستان کے آگے سے گزرتے ہیں. आज भी हम यही बात कर रहे थे, और बात ना भी करें ना तो जब भी वहां से गुजरूं तो मैं सोचती हूँ कि इनकी मोहलत मुद्दत ख़त्म हो गई, हमारी अभी बाकी है। ये हमारे लिए पैगाम है कि कल तुम इस कब्र में हो सकते हो। आता है कोई कब्र से निकल कर? कभी फोन करता है कोई मरने वालों को? कोई बुलाता है? कोई कमी महसूस करता है? कोई किसी को मिस करता है कि हाय वो क्यों नहीं आए? खुद ही सब्र आ जाता है। आप कहते हैं वो रहे ही नहीं है। तो जो जीते जी मुर्दे बन जाए, और जिनको कुरान की दौलत मिल जाए, जिनको ये मजा एक दफा मुंह को लग जाए, फिर वो बेअमल हो जाए, तो ये बात इंसान के लिए खतरे की है। आज भी आपके मुल्क में 95% से ज्यादा लोग बेनमाजी हैं। 5 वक्त की नमाज नहीं सब पढ़ते। एक जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग थी, तो दीवारों पे लिखा हुआ इतना खूबसूरत, थोड़ी थोड़ी जगह पे एक ही किता लगा हुआ था, अर्राशी वल मुर्तशी खुला हुमा फिन्नार, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। फिर उसके नीचे चंद इंस्ट्रक्शंस थी, कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश करे, मांगे तो आप नहीं देंगे, इंतज़ामिया को खबर करें, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इस तरह की बहुत नाइस बातें लिखी। मतलब ये थोड़े थोड़े फासले पे सेम बात लिखी हुई थी। तो मैं वहाँ खड़ी इंतज़ार कर रही थी किसी का, तो मैं पढ़ने लगी। मैंने कहा वाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी बात है, तो फिर तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो बाद में जब कोई शख्स वहाँ थे तो बात हुई, तो मैंने कहा कि ये कितनी अच्छी बात लिखी है, तो इस पर अमल भी होता है? तो हंसे, कहते उसी के पास से दो लोग गुजरे और एक कह रहा है जी हराम से अल्लाह ही बचाए तो बचता है, बंदा तो कोई नहीं बच सकता। दूसरा कहता है वैसे मैं वकील थे कोई, इस तरह के लोग थे कोई, मैं तो जी सारी जिंदगी वैसे रब ने मुझे बचा लिया, पर आज के दौर में कोई नहीं बच सकता। और उसके थे कि बिल्कुल पास से वो गुजर के जा रहे थे। आप देखिए लोग इस तरह भावताव करते हैं। हम लोग किसी जगह थे, पाकिस्तान में पहली दफा ये एक्सपीरियंस मैंने इस दफा किया, हम किसी ब्रदर के साथ थे, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग भी थे। तो कहीं से मोड़ मुड़ा, गाड़ी मुड़ी ना, तो एकदम उस ब्रदर ने रोक ली। हमने देखा क्या हुआ है, तो फौरन गाड़ी रुकी, तो पीछे से एक पुलिसमैन आया, तो कहता है जी कागज दिखाएं। खैर जो भी उसने पूछा, जैसे यहां आपको कंट्रोल कभी हो, तो कहता है जी आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी। मुझे पहली दफा उस दिन पता चला कि पाकिस्तान में भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए और ना बांधने का जुर्माना है। तो कहता है कि जी आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, तो जिस गाड़ी में आप हैं ना इसका शायद 1300 रुपया बनता है, तो आप मुझे 500 रुपया दें। अच्छा जब वो बात कर रहे थे तो वो ब्रदर सीधे से थे, उन्होंने फौरन जेब में हाथ डाला, 500 का नोट उनको पकड़ा दिया। जब वो बाहर चला गया तो हम लोग उन्होंने कहा कि ब्रदर आपने इनको पैसे दिए हैं तो इसकी स्लिप ली आपने? तो नहीं थी ली भी। तो मैंने कहा कि आप देखें, मैंने सर से कहा कि इनसे बोलें कि उसकी स्लिप लें, आपको कैसे पता कि ये चालान हुआ है, कागज़ हुए हैं, ये हुआ है वो है। वो कहते हैं नहीं, अगर ये पैसे ना दिए ना तो फिर वो मेरे कागज़ रख लेंगे और कल जाके मुझे कचहरी में कैसे छुड़ाने पड़ेंगे, जो तरीका होता है। खैर हमारे कहने पर वो ब्रदर उठ के गए, तो वापस एक पुलिस मैन को इशारा किया, वो आया कहता है जी मैंने अभी पैसे दिए हैं तो मुझे पर्ची चाहिए। वो कहता है मैंने तो आपसे नहीं लिए, किधर है? वो कहता वो पीछे होगा। खैर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बंदा आ गया, तो इनकी सीट के पास खड़ा होके ना, तो 500 का नोट निकाल के ना, तो इनको पकड़ा रहा है ब्रदर को, तो कहता है जी कागज़ दें और जाइएगा कल कचहरी से लेके आइएगा। तो इन्होंने कहा कि तुम मुझे इसकी रसीद दे दो। यानी मैं आपको सिर्फ समझाने क्या लगी हूँ कि आखिर इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के, फिर उसको 500 का नोट दिया और चल पड़े। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या लेन देन हुआ है, कि चलान है, गवर्नमेंट की चीज़ होती है और ये लीगल हुआ है। मुझे एक ही खटका था कि ये लीगल पैसे गए हैं कि इलीगल गए हैं। चलो 500 जुर्माना गवर्नमेंट को गया, पर्ची दे दो भाई, आपकी जान छुट गई। मैंने घर आके अपने भाई से बात की, कैसा हुआ? कहता बता, उसने कहा कहता हराम खा के गया। करते क्या है? अब असूल क्या था कि वाकई उनको उस ब्रदर का पेपर वर्क ही लेना चाहिए था। पुलिस मैन को इख्तियार है, आप देखिए आप यहाँ काउंटर पे खड़े हैं, अगर आप में से कोई बाहर रिसेप्शन पे, आपको भी इख्तियार नहीं कि आने जाने वालों से 500 का नोट लेके बगैर लिखे रख लें, किस जिम्मन में है, और जो देते लेते हैं वो पर्ची मांगा करें। फीस है, डोनेशन है, सदका है, क्या किसी को इस जगह हक नहीं? तो सड़क पे खड़ा है बंदा, उसके पास इतना सा एक कागज का टुकड़ा नहीं है कि दे दे के ये 500 दिए। गवर्नमेंट ने अगर ये ऑप्शन रखी हुई है कि आप अपने कागज ना दें और पैसे इधर ही दे दें, तो गवर्नमेंट ने कोई पर्ची भी तो बनाई होगी ना। और वो बड़े गुस्से में तड़क के बोल रहा था, उसको पता था कि ये नहीं देंगे। इन्होंने कहा मैं दूसरे शहर से आया हूँ, मुझे इधर नहीं, कहते नहीं जाएं आप छुड़ाएं जब मर्जी होगा, तो ये पैसे पकड़े मुझे नहीं आपसे पकड़ने। तो बाद में जब उन्होंने पूछा, भाई कहते हैं ये रिश्वत लेके गया, और साफ उसके जुमले मुझे याद है कि जिस गाड़ी में आप बैठे हैं इसका गालिबन कुछ ज्यादा बताया उसने, पर मैंने आपको 500 लगाया, तो इसमें भी बू आ रही है, ले गया। और हर दूसरी गाड़ी खड़ी हो रही थी हमारे पीछे, बिल्कुल एक छोटा सा स्टूडेंट था बच्चा, उसकी गाड़ी खड़ी की, उसको बाहर खड़ा किया हुआ था, पता नहीं उसकी जेब में 500 भी थे कि नहीं। ये सड़क पे वल्ला ही आपके मुल्क की सड़क पे खड़े होके हो रहा है, कहां दीन का अमलन इतने पास है। और मैं सोची थी जितनी गाड़ियां खड़ी हर एक से अगर ये 500 भी लेंगे, और जिस पुलिस मैन ने रोक लिया वो उसके हो गए। बू आती है मुंह से हराम की, ये इस्लाम तो नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप दीन के पौधे बने? ये तो हाँ मैं कहती हूँ अपना सर पटक रहे हैं, ये सर फोड़ते हैं हम रोज इधर आके बैठ के, खून जलाते हैं अपना भी और दूसरों को भी जलाते हैं। दुनिया में आपको ये चीजें नहीं नजर आएंगी, और फिर कहते हैं अल्लाह की मदद आए, फिर हम कहते हैं जलजले ना आए, फिर हम कहते हैं ये ना हो वो ना हो। तो याद रखिए कि कुछ करना है तो आप करके जाएं, हर एक को ये दर्द नहीं मिलता। अगर ये बातें जुमे के खुतबों में हर जुमे में बयान कर दी जाए तो कोई 100 में से 10 बंदों को तो याद रह ही जाएंगी ना अगले जुमे तक। इसलिए फिक्र करें, देखिए ये ईमान के सौदे हैं। कैंसर से बड़ी कोई बीमारी नहीं दिखती आज, ईमान की मौत तो उससे भी बड़ी मौत है।